असंप्रयुञ्जतः प्राणान् शाम्यति स्थिमितं मनः अदृष्टात्। जो वस्तु दृष्ट नहीं है उससे, अश्रुतात् जो सुनी नहीं गई है उस वस्तु से, भावात् वस्तु से, न न भावः राग या द्वेष उपजायते उत्पन्न होता है, असंप्रयुञ्जतः यदि विषयों से संयोग नहीं कराया जाता है, प्राणान इंद्रियों का शाम्यति शांत हो जाता है, स्थिमितम स्थिर होकर, मनः मन सुना रहे हैं। तो प्रेरवा महाराज कहते हैं कि जो वस्तु नहीं देखी गई है और कभी सुनी नहीं गई है उसके मन में कोई, उसके विषय में कोई मनोभाव उत्पन्न नहीं होता है। जिन वस्तुओं को व्यक्ति देखा है और सुना है उन्हीं के विषय में मन की गति धावित होती है। इसलिए अच्छा यही है कि भगवत भक्ति से विरुद्ध वस्तुओं के विषय में न सुना जाए न उन्हें देखा जाए, यही सिद्धांत है। क्योंकि अदृष्टात् अश्रुतात् भावात् न भाव उपजायते। जिसको व्यक्ति कभी देखा नहीं है किसी भी जन्म में, तो उस वस्तु के विषय में मन में कोई भी विचार नहीं उठता है, तरंगे उठेंगे नहीं। और नहीं सुना है तो सुनी और देखी हुई वस्तुओं के विषय में ही आदमी कुछ सोचता है, चाहे प्रतिकूल सोचे या अनुकूल सोचे, चाहे उसके मन में द्वेष उठे या स्नेह उठे, परंतु दृष्ट और श्रुत वस्तुओं में ही मन धारित होता है। अतः भगवान में अपने मन को स्थिर रखने के लिए उनके भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का दर्शन और श्रवण नहीं करना चाहिए। यह तो व्यक्ति स्वीकार कर सकता है कोई भी कि ठीक है श्रवण नहीं करेंगे, लेकिन दर्शन कैसे नहीं होगा। संसार में समाज में हम आंख बंद करके कब तक रहेंगे, दर्शन तो हो गए हैं। परंतु इसके द्वारा यह उपदेश दिया जा रहा है कि जितने से निर्वाह हो सके इस जीवन में उतना ही दर्शन करना चाहिए और उतना ही सुनना चाहिए। परंतु इस संसार में देखा जाता है कि लोग सांसारिक वस्तुओं को बहुत देखते हैं और सुनते हैं। मैं कुंभ मेला में देखा इलाहाबाद, जहाँ भगवान की वार्ता होती थी तो वहाँ कम लोग जुटते थे और कहीं कहीं दूसरा दृश्य उपस्थित हो रहा था, वह काफी लोग जुटते थे, गए थे धर्म करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। लेकिन एक दो जगह मैं देखा कि बहुत काफी लोग जुटे हुए थे, भक्ति से कोई संबंध नहीं था उस दृश्य का। लोगों की श्रद्धा है गंगा जी में, गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी का नाम लेने से निश्चय ही पापों का क्षय होता है। परंतु गंगा जी में वह शक्ति क्यों है? इसीलिए है ना कि वे भगवान के चरणों के पराग को लेकर के बहती है। कम जानकारी, गंगा जी में श्रद्धा है और गंगा जिसके चरण से निकली है उसका पता ही। गंगा जी जहाँ से निकली है जानते हो? बता हाँ, कहाँ से? शिव जी के जटा से। मैं कहा नहीं, शिव जी के जटा में तो उनका सेकेंडरी उद्गम है, तो बाद में निकल, मूल रूप से कहाँ से निकल रहे हैं वो व्यक्ति कहता। हाँ हाँ, वो भगवान का चरण धोने से निकल। जिनके चरण धोवन की इतनी शक्ति है, कोटि कोटि जनता शुद्ध हो जाती है स्नान करके, तो उन प्रभु के विषय में जानना आवश्यक है। श्रद्धा होते हुए भी भगवान के विषय में श्रवण नहीं होने के कारण उचित जानकारी नहीं हो पाती, और इसका कारण यह है कि मनुष्य दूसरा दूसरा विषय सुनता रहता है, दूसरा दूसरा देखता रहता है। भगवान में मन को स्थिर करने के लिए दूसरे दृश्यों को देखना नहीं चाहिए। यदि कदाचित नेत्र जाए तो विवेक दृष्टि से मन में उसे फिर लौटा लेना चाहिए और दूसरी बातों को सुनना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा अनुभव दिया जा रहा है एक महान पुरुष का, और श्री भगवान स्वयं ही इसको उद्धृत कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? तो पूर्व महाराज कहते हैं, असम प्रजुंजत प्राणान साम्यति स्थितम मन। यदि इंद्रियों का संजोग विषयों से नहीं कराया जाता है, जैसे आंख का रूप से, कान का शब्द से, तो इंद्रिय का स्पर्श इत्यादि से, तो जब इंद्रियों को विषय भोग में नहीं लगाया जाता है तो मन धीरे धीरे स्थितम, स्थितम का अर्थ अचंचल होने लगता है, चंचलता उसकी दूर होने लगती है, स्थिर होते 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 साम्यति, शांत हो जाए, अब विषयों की तरफ नहीं जाता। विषयों की तरफ मन की गति इंद्रियों के कारण होती है, इसलिए पहले इंद्रियों पर ही नियंत्रण करना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण करने से मन शांत हो जाता है। शांत का अर्थ है भगवान में लग जाता है और विषयों की तरफ धावित नहीं होता। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चन्द्रियैः विदुषां चापि विश्रद्ध सद्वर्गः किमु मादृशाम्। इसलिए विवेकी पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्रियों का दर्शन और श्रवण न करे, उनका संग न करे, और स्त्री लंपटों का, जो लोग स्त्री में ही आसक्त हैं, स्त्री को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं, उनका कभी संग नहीं करना चाहिए और स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। इसको प्रश्न होता है कि जो लोग जानकार हैं कि स्त्री के शरीर में क्या है, अथवा विवेक है, भगवान में मन लगा है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है अगर वे संसार के दृश्य देखें या सुने, तब कहते हैं नहीं। विदुषाम चाप्य विश्रद्ध सद्वर्ग, ये इंद्रियों के जो विषय हैं अथवा इंद्रियों का जो समुदाय है, छह पांच ज्ञान इंद्रियां और एक मन, विद्वानों के लिए भी ये विश्रम विश्वसनीय नहीं। जो व्यक्ति जानता है कि यह जड़ शरीर है, शरीर में मल मूत्र भरा पड़ा है, और इसके साथ ही साथ अपने आत्मा को जानता है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है, ऐसा विद्वान पुरुष भी यदि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न करे और स्त्री के विषय में दर्शन श्रवण करे और स्त्रैणों से मिले, तो इंद्रियां उसको पतन में डाल ही देती हैं, वह विद्वता और ज्ञान काम नहीं करता। ये तो विद्वानों के लिए बात है, फिर किमु मादृशम, फिर मेरे जैसे मूर्खों के विषय में तो कहना ही क्या। पूर्वा महाराज अपने को बहुत ही हीन स्तर पर रख रहे हैं। किम उ मादृशाम, मादृशाम का अर्थ मेरे जैसे जो लोग हैं उनको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके विषय में तो कहना ही क्या, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, और इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ देखने में सुनने में कंट्रोल नहीं है, तो उसके पतन में क्या असंभावना है, वो तो निश्चित गिर जाएगा। विद्वानों के लिए भी विश्वसनीय नहीं। अब श्री भगवान पूर्व महाराज के वक्तव्य का उपसंहार करते हुए कहते हैं, एवं प्रगायन नृपदेव देवः स उर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य माम वै उपारमत ज्ञान विधूत मोहः। नृप देव देव महाराज श्री भगवान कहते हैं कि महाराज पुरुर्वा राजाओं के राजा थे, तो सबसे श्रेष्ठ राजा, और इस प्रकार से अपने अनुभव को प्रकृष्ट रूप से वर्णन करते हुए गाते हुए उर्वशी लोक को छोड़ दिए, क्योंकि निष्प्रिय हो गए। एक दिन पुरुर्वा महाराज उर्वशी के पीछे जा रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, रुकी नहीं और रुकने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वही पुरुर्वा महाराज बहुत वर्षों के बाद स्वयं ही उर्वशी का त्याग कर दिए। उर्वशी लोकम विहाय, और अपने हृदय में निज परमेश्वर को देखकर और इस तरह से उनका ज्ञान बढ़ गया और उपारमत वे उपरत हो गए, विरत हो गए। भगवान जिस प्रकार उनके पतन की कथा कहे, उस तरह से उनके उद्धार की कथा भी कह रहे हैं। माम शब्द कहा, मेरा अनुभव किए, विधूत मोह, उनका मोह नष्ट हो गया। ज्ञान से मोह नष्ट हो गया, यहाँ ज्ञान का अर्थ है भगवत ज्ञान। भगवान के सच्चिदानंद रूप लीला गुण आदि का उन्हें साक्षात्कार होने लगा, और भगवान के रूप गुण लीला आदि में इतना आकर्षण है कि उस सुख के आगे किसी का भी मन संसार में जा ही नहीं सकता। तो ज्ञान विधूत मोह, भगवान का जब अनुभव मिला उन्हें, उसके कारण उनका मोह नष्ट हो गया, उनकी यह बुद्धि सदा के लिए समाप्त हो गई कि उर्वशी सुखमय है या भोग्या है, भोगने जोग है, यह विचार उनका सारा समाप्त हो गया। और जब उर्वशी में ही उनकी भोग्य बुद्धि चली गई, तब संसार में अन्य जगह आसक्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इस तरह विधूत मोह, विशेषण धूत मोह, पूरा पूरा मोह अज्ञान नष्ट हो गया। ये भगवान के शब्द पूर्व महाराज के विषय में, विधूत मोह, अज्ञान नष्ट हो गया और वे समझ गए, मुझको जान गए, पूरा पूरा प्राप्त कर लिए। कहाँ आत्मनि, यहाँ आत्मनि के दो अर्थ हैं। एक तो आत्मा का अर्थ होता है हृदय, अपने मन में मुझे समझ गए, अथवा आत्मनि का अर्थ चिन्मय साम्राज्य वैकुंठ में वे मेरा साक्षात्कार किए, समझ गए कि भगवान दिव्य है, चिन्मय है, और अपने धाम में नित्य लीला विलास करते रहते हैं। भगवान का धाम भी चिन्मय है, उसको भी आत्मा कहते हैं। तो आत्मनि आत्मानम माम अवगम्य, आत्मा में आत्मा को देखकर, और वह आत्मा मैं है। तो भगवान चिन्मय है, उनका धाम चिन्मय है, यह साक्षात्कार उन्होंने किया। और दूसरा अर्थ है कि बहुत निकट अपने हृदय में ही भगवान का अनुभव करने लगे, और वास्तव में भगवान हृदय में हैं परमात्मा के रूप में। तो इस तरह उनका ज्ञान नष्ट हो गया और उपरत हो गया। ततो दुःसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतरितस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः। अब फलितम आह द्वाभ्याम, हमारा पूर्व इस तरह से उपरत हो गए। इस संपूर्ण कथा का सार भगवान वर्णन कर रहे हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह दुःसंग छोड़कर संतों में आसक्त हो, संतों का संग करे। दुःसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत। यह सज्जेत शब्द ही हिंदी में सटना शब्द। असत संग त्याग कर सत्संग में रहे, साधुओं के संग में रहे। और यहाँ पर साधुओं का लक्षण भगवान बताए, सबसे मुख्य लक्षण बताते हैं, संतों अपेक्षा मत चित्त, संत मत चित्त, जिनका चित्त मुझ में लगा रहता है, यही है साधु का लक्षण। और मत चित्त मई एवं चित्तम जैसा ते मत चित्त, मुझ में ही चित्त लगा रहता है। मुझ में का अर्थ क्या है, भगवान अपने तरफ प्रवचन जब कर रहे हैं उद्धव से, तो अपने तरफ दिखा करके कहते हैं कि मुझ में ही जिनका चित्त लगा रहता है। भगवान के सच्चिदानंद में स्वरूप, सांवले स्वरूप में, लीला विलासी श्री कृष्ण में जिनका मन रमा रहता है, वही साधु है, वही संत है। आज के युग में संत शब्द कहिए तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साधु कौन है, संत कौन है ना। साधु शब्द भी आजकल कहने पर ऐसा मन में आएगा कि कोई विशेष भेष वाला, वेशभूषा वाला, और एक व्यक्ति तो एक दिन वृंदावन में कह दिया परिक्रमा मार्ग में, वो साधु क्या है जो गांजा नहीं पीता, और बैठे हुए थे ऐसे गोलंबर, और इस्कान का एक भक्त कह दिया कि साधु होकर के गांजा पीते, दूसरा कहता है वो साधु कैसा है जो गांजा नहीं पीता। ऐसे चल गया विवाद, परिक्रमा में थे, मैं कहा चलो चलो छोड़ो, यहाँ शिक्षालय नहीं है, वो करने को जो कर रहे हैं। जनता का साधुओं के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं, वे नहीं जानते। इसीलिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं मत चिंता। और भगवान कहते ततो दुःसंग मुझसे, जब दुःसंग छोड़ दे। दुःसंग क्या है, दूषित संग, दुःसंग, तो जो दूषित है, दूषित का अर्थ है जिनका मन विषयों में आविष्ट है, उनका संग छोड़ दे। और खास करके दुःसंग है ये स्त्री, बाल बच्चा, धन, घर, यही सबसे भारी दुःसंग, दूषित संग, खराब समाज, उसको छोड़ देना। और छोड़ करके क्या करे, सत्सु सज्जेत, सज्जनों के पास रहे। पर एक भगवान शर्त रख रहे हैं कि बुद्धिमान, यदि बुद्धिमान है तो, बुद्धिमान नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे करना होगा करेगा। मूर्खों में बहुत बड़ा साहस देखा जाता है, बुद्धिमान आदमी संभाल करके पग रखता है, किससे प्रेम करना चाहिए, किससे नहीं, किसके पास रहना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, इसको तो बुद्धिमान समझता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है किसका संग करना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, किससे प्रेम करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किससे लेना चाहिए। तो भगवान इसीलिए बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है, उसे चाहिए कि वह दुःसंग न करे और संतों से, मेरे भक्तों से प्रेम कर, संग कर, उनके पास रहे, जाए, जता सकते। क्या लाभ होगा संतों के पास, संत एतस्य छिन्दन्ती मनोव्यासंग मुक्ति भी। वहां जाने पर संत गण, भगवत भक्त गण उक्तियों से, सदुपदेशों से उस सत्संगी के मनोव्यासंग को काट देंगे। मन में जो दृढ़ आसक्ति, आसक्ति है जन्म जन्म की, संसार की आसक्ति, उसको वे लोग काट देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। कैसे? उक्ति भी। इस उक्ति की व्याख्या भगवान बाद में करेंगे कि ते सुनित्य महाभागा महाभागे सुमत कथा संभवंती हिता निर्णाम जुष्टम प्रतिलम। संत वह है जो कृष्ण की वार्ता करता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि में उसका मन आविष्ट है। तो ऐसे साधुओं का समाज सर्वदा भगवान की बातें करता रहता है। वास्तव में यह असत्य संसार में देखा जाता है, जिसका जिसमें मन लगा है उसी की चर्चा करता है। चर्चा द्वारा, वार्तालाप द्वारा पता लगा लिया जा सकता है कि यह आदमी किस स्तर का है, कहाँ, इसकी चेतना में क्या बसा हुआ है। जो लोग भगवान के रूप गुण लीला आदि में आसक्त रहते हैं, वे लोग भगवान की ही बात करते हैं। जो जिस स्तर का व्यक्ति होता है, जिस चेतना का होता है, वही बात करता है। एक बार इस बात की व्याख्या भाई जी श्री हिमान प्रसाद पुद्दार जी कर रहे थे, तो चर्चा में एक विषय आ गया कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा से चक्रव्यूह भेदन का रहस्य बता रहे थे और रात्रि के समय। तो अर्जुन एक परम वीर व्यक्ति थे और उनकी पत्नी क्षत्रियाणी थी। तो अर्जुन युद्ध की बात कर रहे थे कि ऐसे सेना सजती है चक्रव्यूह में, ऐसे व्यूह बनते हैं और उसका भेदन इस तरह से किया जाता है, यह बाण चलाया जाता है, वह किया जाता है, सात व्यूह बनाए जाते हैं। अर्जुन बता रहे थे, लेकिन छह व्यूह भेदन की बात जब वे किए, सातवां चालू करने पर सुभद्रा जी को नींद आ गई, सो गए, तो इन्होंने बंद कर दिया। गर्भ में अभिमन्यु इस बात को सीख लिया। प्रहलाद महाराज भी नारद जी के उपदेश को गर्भ में ग्रहण कर लिए। तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पुद्दार बोल रहे थे कि जो जैसा होता है वैसी बात करता है। तो अर्जुन वीर है, क्षत्रिय है, इसलिए अपनी पत्नी से युद्ध की बात कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनकी चेतना में बसा हुआ था, युद्ध कला बता रहे थे अपनी पत्नी से। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस चेतना का होता है, उस चेतना का रहस्य उद्घाटन उसकी बातों से हो जाता है। बात बोलने से ही पता लग जाता है कि ये आदमी कितना पानी में है, इसकी चेतना क्या है। अन्यथा यदि बात न बोली जाए तो एक बहुत बड़े सन्यासी को, ज्ञानी को आप बैठाइए मंच पर और एक तत्काल ही आज ही छोर करा करके और त्रिदंड पकड़ा करके और बैठा दीजिए, बोले ना, दोनों को कह दीजिए बोलिए मां, तो बिना बोले कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन अनुभवी सन्यासी है और कौन आज का है, बोलने पर पता चलेगा। मुंह से जबान निकलते ही पता लग जाता है कि हृदय में क्या है। तो हृदय के भावों का प्रकाशक है वचन। भगवान के जो अनन्य भक्त जन है, वे भगवान के ही गुणों का वर्णन करते रहते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन, दया का वर्णन, भगवान की भक्त वत्सलता और उनके ऐश्वर्य, उनकी विविध लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं नित्यम तेसु नित्यम महाभागा महाभागा महाभागेशु सब कथा संभवन्ति। उन महाभाग्यवान वैष्णवों के बीच, मेरे भक्तों के बीच नित्य मेरी वार्ता होती रहती है, चाहे द्वारका की लीला हो, चाहे ब्रज की लीला हो, या मेरे विविध अवतारों की लीला हो, या मेरी सृष्टि लीला का वर्णन हो, जो भी हो, सर्वदा वे बात करते रहते हैं। यही है उक्ति, ऊपर उक्ति शब्द आया है, उसका मिलान देखिए। अन्यथा यदि केवल उक्ति भर कह करके भगवान छोड़ देते, तब तो साधु के भेष में कोई कुछ भी बोल रहा है उसी को मान लिया जाए। कुछ भी बोलने से मन का व्यासंग, मन की आसक्ति नहीं जाती है, भगवान के विशेषताओं का वर्णन करने से ही मन संसार से हटकर भगवान में लग जाता है। तो संत यतस्य छिद्यन्ति मनोव्यासंग मुक्ति, जो साधुओं के संग में व्यक्ति आता है तो उसकी आसक्ति को साधु जन, मेरे भक्त जन अपने सदुपदेशों से, मेरी कथाओं के वर्णन से आसक्ति दूर कर देते। मनोव्यासंग, मन भी आसंगम, व्यासंगम, मन में बहुत काल से संसार के भोगों के प्रति आसक्ति है, लालसा, वासना। एक सत्संगी के व्यामोह को काटने के लिए भगवान बहुत साधुओं का प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन में, एतस्य एक वचन में, एतस्य मनोव्यासंगम संत उक्ति ही छिंदन्ति। इसका अर्थ है कि मन की आसक्ति को काटने के लिए और भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए बहुत बहुत वैष्णवों के मुख से सुनने की आवश्यकता है। कोई किसी तरह से वर्णन करता है, कोई किसी तरह से वर्णन करता है, तो सत्य बात है भगवान की कथा, लेकिन भगवान की ही बातों को, भगवान की लीलाओं को अपने भक्ति भावना से पूरित करके जब वैष्णव उसको बोलते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और कोई किसी लीला को बोलते हैं, कोई किसी लीला को बोलते हैं, भगवान की के सौंदर्य की बात कोई करते हैं, कोई दया की बात करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो इस प्रकार से सभी बातें सांगोपांग समझ में आ जाती हैं, तो आसक्ति कट जाती है और भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है। यहाँ पर इस बात की शिक्षा मिलती है कि बहुत लोगों से सुनना चाहिए, पर बहुत लोगों से सुनने में सावधानी रखनी चाहिए कि वे सब एक मत के हों, सभी कृष्ण के भक्त। आजकल तो एक मंच पर बहुत तथा कथित साधु जुटते हैं और एक साधु निर्घाट एक तीर्घाट बोलता है, सीध, उनकी बातों में कोई मेल नहीं होता। इसलिए ऐसे साधुओं से नहीं सुनना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, जनकपुर में एक यज्ञ हुआ था, महाराज निमि ने कराया था, तो उसमें भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र गए, 9 जोगेश्वर, और उन 9 भाइयों से महाराज जनक ने 9 प्रश्न किया। तो सभी प्रश्न भगवान की महिमा के सूचक, वे 9 आत्मविद्या विशारद थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भगवान के विशेषताओं का वर्णन किया। पहला प्रश्न था कि भागवत धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है कि भागवत किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है कि भगवान की माया क्या है, नारायण की माया क्या है, और नारायण कौन है, चौथा प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न है, भगवान के विविध लीलाओं अवतारों के विषय में प्रश्न है, क्रिया योग के विषय में प्रश्न है, भगवान का भजन जो नहीं करते उनकी क्या गति होती है, यह अभी एक स्वतंत्र प्रश्न है। माया से कैसे पार किया जा सकता है, माया को कैसे पार किया जा सकता है, तरा जा सकता है, यह प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है कि भगवान की विविध युगों में किस तरह से आराधना की जाती है, किस नाम से, किस वर्ण के भगवान होते हैं और किस विधि से, और भजन करने वालों में क्या क्या गुण होना होता है युग के अनुसार। तो उसी संदर्भ में करभाजन जी बताए हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगम पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजंत ही सुमय दशा। कलयुग में भगवान की आराधना संकीर्तन यज्ञ से होती है, अन्य युगों में अन्य विधि है, कलयुग में संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत बड़े भागवत पुरुष महाभागवत श्री जनक जी महाराज के यज्ञ में प्रवचन हो रहा है। 9 भाई 9 प्रश्न का उत्तर दिए, साथ ही रहते हैं और बहुत ही सुंदर उत्तर। तो इस प्रकार से 9 के प्रवचन को सुन करके महाराज निमि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी भक्ति भावना भगवान में बढ़ गई। तो इस तरह के बहुत वक्ता हो सकते हैं, परंतु ये अनन्य भाव से श्री कृष्ण के भक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के रूप में आसक्त नहीं है, भगवान के गुणों में, उनकी लीलाओं में आसक्त नहीं है, उसकी युक्तियों में कोई दम नहीं होता। वो अपनी आसक्ति नहीं काट सकता, दूसरे की आसक्ति क्या काट सकता है। संत एतस्य छिद्यन्ति मनोव्यासं मुक्तिः। संत अपनी अपने सदुपदेशों से सत्संगी के आसक्ति को काट देते हैं। बारंबार सुनने से भगवान की कथा बारंबार तब असर होता है। जब कछु काल कीजिए सत्संग, तब ही होई संशय कर भंग। बहुत काल तक सत्संग करने के बाद तब संशय मिटता है, भगवान में मन लगता है। बहुत काल लगता है, इसीलिए धैर्य रख करके भगवान की कथाओं को बारंबार सुनना चाहिए। अवसर मिलने बारंबार अवसर निकालना चाहिए। अवसर मिलेगा नहीं, अवसर निकाला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि घर के आदमी एक दिन कहेंगे कि अब आप बहुत घर में काम किए, अब एक दो तो महीना घूमिए कथा सुनिए, ऐसा कभी नहीं होगा। न पुत्र कहेगा, न पत्नी कहेगी, न कोई घर का और दूसरा आदमी कहेगा, बल्कि आप सत्संग में जाइए, भगवान की कथा सुनने जाइए, लोग व्यंग करने लगते हैं अपने ही घर के, अब बड़का भक्त भाई बना न बिन कर ऐसे बोलते। इस तरह के व्यंग होते हैं, इसीलिए प्रयास करना चाहिए। तस्य हेतु प्रजते कोविदो न लभ्यते जब भ्रमता होकर। न सरकार कहेगी कभी की कथा सुनो, न समाज कहेगा, न परिवार कहेगा, न अपना मन कहेगा, यह भी बात है। इसलिए जबरदस्ती भगवत कथा सुननी चाहिए। आजकल सत्संग के नाम पर बहुत दूसरी दूसरी बातें फैला रहे हैं लोग, अपने मन के कबाड़ को, कूड़ा करकट को उड़ेल रहे। जिस कथा में भगवान की बात नहीं है, नजत्र जग्गेश मखा महोत्सव, नजत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा, नजत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो। जैसा वर्णन है पंचम स्कंध में कि जहाँ भगवान बैकुंठ के, श्री कृष्ण के कथा सुधा की नदियां नहीं बहती हैं, और उन नदियों का आश्रय लिए हुए जहाँ वैष्णव नहीं है, और जहाँ भगवान का उत्सव नहीं होता है, यज्ञ नहीं होता है, ब्रह्मा जी का लोक भी हो तो वहां नहीं रहना चाहिए। सुरेश लोक को पिनवई सेव्यता, सुरेश का अर्थ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं रहना चाहिए। यदि वहाँ कीर्तन नहीं होता है, भगवान कृष्ण की कथा नहीं होती है, महोत्सव नहीं होता है, प्रसाद वितरण नहीं होता है, वो ब्रह्मा जी का लोक भी हो तो नहीं जाना चाहिए। जग्गेश मखा महोत्सव, साधुओं के संग में भाग लेना, साधुओं के संग में रहना चाहिए, तब मन की आसक्ति मिटती। सताम लक्षण माना संत के, भगवान ने यह कहा कि संतों का संग करना चाहिए, तो संतों का लक्षण क्या है? मानो उद्धव जी ने पूछा तो भगवान साधुओं का, संतों का लक्षण बता रहे हैं। संतो नपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रहा। भगवान कह रहे हैं संत मच्चित्ता, संत का सबसे बड़ा स्वरूप लक्षण यह है कि वे मेरे चिंता होते, मेरे रूप गुण लीला आदि में ही उनका मन लगा रहता है, मैं ही उनके जीवन का सर्वस्व, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव। मनुष्य का चित्त वही लगता है जिस वस्तु को उसका देह समझता है, सुखमय समझता है। तो भगवान के कहने का आशय है कि मेरे रूप में, मेरे लीला में, मेरी लीला में, मेरे गुण में, मेरे परिकरों में, मेरे भाव में ही उनकी सर्वोपरि बुद्धि होती है, सुखमय बुद्धि होती है, तात्विक बुद्धि होती है। यही तत्व है, यही जीवन का ध्येय है। और इस तरह से मेरे रूप गुण आदि पर लुप्त होकर के 24 घंटे निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहते हैं, यह है साधु का लक्ष्य, भक्त का लक्ष्य। इसी को श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण भावनामृत शब्द दिए, बहुत सुंदर शब्द। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना के लिए अंतरराष्ट्रीय समाज बनाया है प्रभुपाद जी। इंटरनेशनल सोसाइटी है किस लिए? क्या कोई मोटर गाड़ी पैदा करने के लिए? नहीं। कोई इंटरनेशनल कल कारखाना खोलने के लिए प्रभुपाद जी ने नहीं बनाया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण में प्रेम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समाज बनाया, सुविधा देने के लिए। बहुत सुंदर नाम है उसको हिंदी में श्री कृष्ण भावनामृत संघ का। यही है साधु का कार्य। मत चित्ता का यह अर्थ, साधु के हृदय में भगवान बसे हैं और भगवान कृष्ण को ही वो चारों तरफ भरना चाहते। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, ये प्रथम महापुरुष हैं जो श्री कृष्ण को सारे जगत में भर दिए। जहाँ जाइए वहाँ भगवान के श्री विग्रह मिलते हैं, घंटियां बजती हैं, मंदिर चमक रहे हैं, गलियों में भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की सुंदर सुंदर फोटो, सुंदर सुंदर पुस्तकें सब जगह फैल रही हैं। इसके पहले भी कुछ लोग गए थे विदेश में और जाकर वहां को अधिक भगवान निराकार, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं और न तो जीवन में सदाचार है। ये कौन सा ज्ञान है कि भगवान निराकार है? ये कोई ज्ञान है जो शास्त्रों में भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, भगवान के उपदेश का, गीता और भगवान के स्वभाव आदि का, उसको कहना चाहिए ना। तो श्रील प्रभुपाद प्रथम व्यक्ति हुए मानव के इतिहास में जिन्होंने इतना व्यापक रूप में भगवान कृष्ण को दिया, समझाया कि यही प्रभु श्री कृष्ण ही वास्तव में वेदों के तत्व और इनकी भक्ति करना ही जीव की का जीवत्व है, जीवन के साथ सकता है। इसमें कोई भी वर्ग भेद, जाति भेद, धर्म भेद नहीं है, सभी श्री कृष्ण के अंश हैं और श्री कृष्ण से प्रेम करने का अधिकार सबको है, स्वरूपगत अधिकार है, जिसको एक बर्थ राइट कर जन्मसिद्ध अधिकार। जैसे लोकमान्य तिलक जी ने कहा था अंग्रेजों के बीच में कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। तो उसी तरह से यह कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से प्रेम करना सबका बर्थ राइट है, बल्कि ये स्वरूपाधिकार, स्वरूपानुबंधी अधिकार है। जन्म से पहले का भी अधिकार है और बाद में भी सब समय अधिकार रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी इस उदार भाव से सारे जगत में श्री कृष्ण को भर दिए और कहीं भी जाने पर महाप्रसाद मिलता है। जिस देश में कल्पना भी नहीं थी कि प्रसाद क्या होता है भगवान का, वहां पर केवल वेजिटेरियन फूड ही नहीं, केवल शाकाहारी भोजन ही नहीं, महाप्रसाद भोजन मिलता है। जो लोग इस्कॉन के गोविंदा में रेस्टोरेंट में खाते हैं तो ये लोग बताते हैं कि ये भोजन एक अद्भुत शक्ति रखता है और वैसी शक्ति अन्यत्र नहीं देती है। इसको मत चिंता करते भर दिया श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जगत में, कोटि कोटि हृदयों में उन्होंने कृष्ण को भरा। तो इस प्रकार मत चिंता का अर्थ है असंत अनपेक्षा, अनपेक्षा का अर्थ है निर्लोभ। साधु वे हैं, वैष्णव वे हैं जिनमें सांसारिक वस्तुओं के लिए कोई लोभ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, जितना है उसमें काम चला लेते। और अनपेक्ष का अर्थ है कि वे भगवान पर ही आश्रित रहते और किसी की आशा नहीं रखते। अनपेक्ष, कोई सांसारिक परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रखते। संसार में कोई अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, धन हो ना हो, स्वजन अनुकूल हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, उसको अनपेक्ष करते हैं। किसी परिस्थिति की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की अपेक्षा करना, यह मेरे साथ होना चाहिए, वस्तु मुझे मिलनी चाहिए, यह जरूरी वह जरूरी नहीं, अनपेक्ष। भगवान गीता में भी कहा था अनपेक्ष सुचिर पक्ष उदासीनो कर्तव्य। अनपेक्ष क्षणिक स्थितियां है। इसीलिए भगवान का भक्त कभी इस अहम में नहीं पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं यह हूँ, मेरी इतनी इज्जत है, मेरे लड़के हैं, ये है, वो है, मैं इतना बड़ा हूँ। नहीं, निरहंकार, निर्द्वंद, निर्द्वंद होता है। दो दो प्रतिकूल परिस्थितियों को द्वंद करते हैं, जैसे शीत और उष्ण, ठंडा लगना, गर्मी का गर्मी लगना, मान अपमान, स्व पर इत्यादि बुद्धि, इसको निंदा स्तुति, इसको द्वंद कहते हैं। जहाँ दोनों एक साथ रहते हैं उसको द्वंद कहते हैं, परस्पर विपरीत। तो मेरा भक्त साधु कभी भी द्वंद से मोहित नहीं होता है, ये द्वंद मोह निर्मुक्त है। जाड़ा का दिन है तब भी उसके नियम अखंड चलते हैं, गर्मी का दिन है तब भी अखंड चलते हैं। कोई अपमान करे तब भी मेरा भजन करते रहते हैं, और कोई मान करे तब भी भजन करते रहते हैं। अपमान से क्षुब्ध नहीं होते हैं और सम्मान से फूलते नहीं। इसको निर्द्वंद होते हैं। जनवरी, दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, उस समय भी मंगलारती में भाग लेते हैं, उस समय भी नहाते हैं ठंडे पानी में। और जो सद्वंद है वे लोग, हो सकता है कि ज्यादा ठंडा पड़ने पर कहा हाँ बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, वो तो शुभ कर्म नहीं कर पाते। ठंडा में ठंडा का बहाना करते हैं, और गर्मी आवे तो घर ओ बहुत गर्म है, जहाँ जाएंगे बस यही बोलते रहे। अरे सब जानते हैं गर्म है, जो काम करना है वो करो, गर्म होने से क्या होगा। गर्मी में भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्त्रियों का कर्म है भोजन बनाना, तो भोजन बनाने में जाड़े में तो उनको बहुत सुख मिलता है, उन्हें अग्नि का ताप मिलता है, दो दो काम होता है, ताप भी मिलता है, भोजन भी बन रहा है, तो उस समय सुख का अनुभव होता है भोजन बनाने में। लेकिन वैशाख और जेठ में वे कहें अपने पति से कि अब हम नहीं बनाएंगे, हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और आप बनाएंगे। नहीं, ये स्वधर्म है, गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, अपना काम है भोजन बनाना तो बनाना। भगवान गीता में कहते हैं इस बात, मात्रा स्पर्श संस्तु कौन तेरा शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमा पाए नो अनित्यास्तां स्थिति स्वभाव। तो चाहे गर्मी का दिन हो, चाहे जाड़ा का दिन हो, चाहे मान मिलता हो, चाहे अपमान मिलता हो, मेरा भक्त एक भाव से रहता है, मुझमें चित लगा रहता है, भजन करता है, कभी सुख दुख आदि से प्रभावित नहीं होता, मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। कभी कभी अकस्मात साधुओं को बहुत मान मिलता है और कहीं कहीं अपमान मिलता है। साधुओं को कितना मान मिला महाकुंभ में, ये तो देख करके आए, जिधर जाओ उधर प्रणाम मिलता है, प्रणाम ही नहीं कुछ वस्तुएं मिलती। ऐसे रास्ता चलते हुए लोग कहते हैं हम आपको देना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं, हम दान करने के लिए आए, ये इसको मान कर। तो उस समय ये नहीं मान लेना चाहिए हाँ मैं अधिकारी हूँ इसका, क्योंकि मैं विरक्त हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। असली भक्त के मन में ये भावना नहीं है। और कहीं कहीं साधुओं को लोग कहते हैं अरे पेट पोसने के लिए काम धंधा छोड़ करके और चल दिए हैं, बस लज्जा नहीं आ रही, ये समाज के भार बने, बस गाना बजाना नाचना यही काम। बहुत अपमान होता है, पर उस समय भी बिल्कुल स्थिर जो रहे, धैर्य न खोए तो साधु हो। कहीं कहीं जाए तो प्रणाम करके माला पहनाए कुछ दे, उसने भी ये ना सोचे कि हाँ हाँ मैं हूँ, आई डिजर्व दिस, मैं तो इसके योग्य हूँ, और ये भी कह दो कि हाँ ये जनता का कर्तव्य है, उसे प्रणाम करना चाहिए, मैं प्रणाम में हूँ और लोग प्रणामक हैं, यही संबंध है, मैं पूज्य हूँ और लोग पुजारी है। ऐसा हुआ तब तो साधु गया है। कहाँ से भजन करेगा, तब वो चक्कर में पड़ेगा कि कहाँ मान मिलेगा, कहाँ पूजा होगी, सम्मान होगा और कहाँ पैसा मिलेगा, बस वही दौड़ कर जाएगा, निश्चित समझ लीजिए। तो वो पक्का साधु नहीं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अपने भक्तों के विषय में, ये निर्द्वंद होता है और निष्परिग्रह, निष्परिग्रह होता है, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करता, जितने से शरीर का काम चल जाए, परिवार का काम भर चल जाए, उतना ही संग्रह करता है, बाकी धन वो दूसरों को देता रहता है। देवे जैसे माता पिता, माता पिता अपने घर में कुछ रखते हैं तो वे अपने लिए नहीं रखते, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, रखते हैं लेकिन बच्चों के लिए रखते हैं। तो उसी तरह से कर्म के अनुसार धन आ जाता है किसी किसी के पास। तो जो सच्चे साधु हैं, भक्त जन है, वे धन को ऐसे नहीं मानते हैं कि मेरे लिए धन आया, आया है भगवान की व्यवस्था से, लेकिन इस धन पर दूसरे का अधिकार है, तो अपनी आवश्यकता भर रह करके बाकी दूसरों को सुविधा देने में दे देता है, लुटा देता है। तो इसको कहते हैं निष्परिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा रखना, इसको एक्स्ट्रा लोड कहते हैं, ज्यादा भार संभाल लेना, और उसे बहुत फजीहत होती है, बहुत दुख में व्यक्ति पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को गहना पहनना है, तो सिकरी पहन लिया गले में, बाजू बंद हाथ में पहन लिया, पैर में नुपुर पहन लिया, लेकिन अब पूरा 100 किलो सोना लाद दिया जाए कि पहनो तो मर जाएगा, कहा जाए इसको लेकर के चलो। एक बार एक चोर इस तरह से पकड़ा गया था, चोरी करके चला हमारे गांव के दक्षिण मुकरम गांव में, वहां की बात, चोरी करके चला तो और चोर भाग गए, और एक बक्सा वो लिया था, वो सोचा कि इसको लेकर कहीं भागूं, लेकिन भागा नहीं जा रहा था, उसने वो पकड़ लिया गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो समझ लीजिए जो लोग आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे भी मारे गए। काम चला लेना चाहिए, काम चलाने का मतलब भूख की ज्वाला बंद हो जाए, कपड़ा लज्जा ढकने के लिए मिल जाए, घर रहने के लिए मिल जाए और ऋण ना हो, यही है काम चलाना, और अपने बच्चे अपनी पत्नी या माता पिता का पोषण हो जाए, कोई साधु महात्मा भीख मांगा है उसका भी पोषण हो जाए, बस यही है काम चलाना। नहीं तो ज्यादा संग्रह करने पर बहुत दुख होता है, कुछ लोग तो वैसे संग्रह करते रहते हैं जैसे मधुमक्खियां संग्रह करते, मधुमक्खियां पुष्पों से पराग ले लेकर, मधु ले लेकर के संचय करती, और मधु छुड़ाने वाले लोग देखते रहते हैं, अच्छा संचय हो रहा है, संचय हो रहा है, और वो लोग पीना जिस दिन चालू करने वाली होती है उसके एक दिन पहले ही धुआं दे करके या चाहे जैसे तैसे पूरा मधुकोश छीन लेते, और वे पीते हैं चाहे ले जाकर के बेचते। संग्रह करने वाले की ये दशा होती है, और संग्रह करने वाला, वो संग्रह करने वाली मधुमक्खियां किस हालत में है, मधु छुड़ाने वाला इस पर विचार नहीं करता है, वो मरे चाहे जिए उसको तो मधु लेना है, मनी इज हनी, पैसा को भी अंग्रेजी में मधु कहा गया। तो भगवान उतना देते हैं जिसकी जितनी जरूरत है, हाय हाय नहीं करना चाहिए बहुत अधिक के लिए, और मान लीजिए संचय कर भी लिए तो करेंगे क्या, छोड़ करके मरेंगे तो उसको छोड़ने में भी दुख होता है, मरते समय भी बहुत दुख होता है, हाय रे छूटा जा रहा है। इसलिए काम भर रखना चाहिए, बाकी भगवान की सेवा में, गरीबों की सेवा में बिता देना चाहिए। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, निष्परिग्रह, और भगवान के भक्तों के बीच सबसे प्रधान कार्य क्या होता है भगवान बताते हैं, ये संतों का लक्षण बता रहे हैं, इन लक्षणों से हीन कोई भी व्यक्ति हो उसको संत नहीं मानना चाहिए। ध्यान रखिए, भगवान बोल रहे हैं, भगवान जो बात कहते हैं उसको प्रमाण मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवन्ति हिता निर्णाम दुषताम प्रपुनंत्यघं। उन महाभाग्यवान संतों के बीच हे महाभाग उद्धव, मेरी कथाएं नित्य संभवन्ति चलती रहती हैं अपने आप, केवल सुनने की आवश्यकता होती है, प्रयास नहीं करना पड़ता है कि आप कुछ कथा सुनाइए या कीजिए। उनमें कथाएं सम्यक भवन्ति, कथाएं चलती रहती हैं संतों के बीच, मत कथा। लेकिन कथा शब्द ही भगवान नहीं कह रहे, मत कथा, मद विषया कथा, मेरे विषय में कथाएं चलती रहती हैं। तो जो मनुष्य जुसताम उन कथाओं में जुटते हैं, उसको पीते हैं, सुनते हैं, तो प्रपुनंति अघम, वे अपना अपराध पाप सब कुछ धो देते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अपने आप कथाएं मिलती है वैष्णवों के पास जाने पर। उनमें नियम ही होता है, प्रतिदिन शाम को कथा कहते हैं या सवेरे कथा कहते हैं। हमारे इस्कान सेंटरों में कोई जाए तो 8 बजे कथा में बैठना ही पड़ेगा और फिर शाम को बैठना पड़ता है, तो अपने आप कथाएं मिलती है। तो संभवंती सब भगवान बोल रहे सम्यक भवंती, होती रहती है कथाएं। निरम जुषतां प्रपुनंति अघम, जो मनुष्य सुनते हैं उनको, उनका पाप ताप सब समाप्त हो जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती है। कथाओं के विषय में भगवान एक शब्द दे रहे हैं हिता, इन कथाओं में ही मेरा प्रेम छिपा हुआ है, यही वास्तविक हित करती है। इस कथा समानम भुवि नास्ति किंचित, इस जगत में भगवत कथा के समान और कोई रत्न नहीं है, कोई धन नहीं है वास्तव में। हिता, हित करने वाली भगवान नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हिता, वही हित, कथाएं ही परम लाभ, परम पुरुषार्थ है जीव का। तो उन कथाओं को जो सुनते रहते हैं उनका पाप तप समाप्त हो जाता है, मुझ में प्रेम होता है। भक्तों के लिए, संतों के लिए भगवान एक शब्द यहाँ विशेष दे रहे हैं, महाभागेशु सबसे, महाभागेशु, महाभाग का अर्थ जिन्होंने पूर्व जन्म में भूरी भूरी तप किया है, दान किया है, मेरी भक्ति किया है, उन्हीं लोगों की रुचि मेरी कथा में होती है। पूर्व जन्म के पाप ते हरिचर्चा न सुहाय, पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी व्यक्ति होता है, उसी को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती। तो महाभाग शब्द दे रहे, महाभाग्य जिन्होंने बहुत पुण्य किया है, तप किया है पूर्व जन्मों में, उन्हीं की रुचि मेरी कथा में होती है। बिना पूर्व पुण्य के कृष्ण कथा में रति नहीं होती, अनुराग नहीं होता। बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा या कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के विषय में या उनके विविध अवतारों के विषय में कथाएं होती हैं, तो कहने वाले और सुनने वाले बिना पूर्व पुण्य के उसमें आसक्त नहीं हो सकते, पुण्य करना चाहिए। और पुण्य का अर्थ है भगवान का नाम जप आदि करना, पुण्य श्रवण कीर्तन। तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत कथा, कब कब कथाएं होती है, तो नित्यम का एक अर्थ होता है प्रतिदिन, और नित्यम का एक अर्थ होता है निरंतर 24 घंटे कथाएं ही चलती। कथा का केवल यही अर्थ नहीं हुआ कि कुछ 1 घंटा बैठकर 2 घंटा कहा जाए, भगवान का नाम जप भी कथा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यम संभवंती केसु तेसु महाभैत भागेशु मत भक्तेशु, मेरे भक्तों के बीच मेरी कथाएं नित्य होती रहती हैं, उसे सुनना चाहिए। जुषताम शब्द दिया, उसी की व्याख्या भगवान पुनः कह रहे हैं, ताये श्रृण्वन्ति गायन्ति जनुमोदन्ति चाद्रितः मत्परः श्रद्धधानश्च भक्तिं विन्दति ते मयि। ये जो लोग ता कथा उन कथाओं को मेरी कथाओं को श्रृण्वन्ति सुनते रहते हैं, ता ये श्रृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति और गाते हैं, बोलते रहते हैं, बारंबार बखानते रहते हैं मेरी कथाओं को ही, और ही निश्चित अनुमोदन थी और अनुमोदन करते हैं। च आद्रिता, मेरी कथाएं ही सबसे बड़ा धन है और जीवन की सफलता है, उन्हीं को सुनने में हमारे जीवन की सार्थकता है, इस भाव से जो सुनते हैं इसको आदर करते हैं। जिस वस्तु को व्यक्ति महान मानता है उसी को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आद्रता का यह अर्थ है परम श्रद्धा। तो परम श्रद्धा के साथ श्रीमंती गायंती अनुमोदंती, तो ऐसे मेरे भक्तजन श्रद्धा रखते हैं, आदर करते हैं, तो मेरी कथाओं के सुनने से, गाने से, अनुमोदन करने से मुझ में प्रेम मिल जाता है। यह भक्ति का अर्थ प्रेमा भक्ति, मई भक्ति बिंदंती, मुझ में प्रेम हो जाता है। तो भगवत प्रेम प्राप्ति में कथा का श्रवण, अनुमोदन और गायन ही मुख्य है, या एकमात्र कह सकते हैं। एक ही श्लोक में भगवान ने आद्रिता और श्रद्धाना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत महत्व की बात है, आदर के साथ और श्रद्धा के साथ। तो ये जो आदर शब्द है वह वर्तमान में जब कथा में बैठे, कथा के परिप्रेक्ष्य में, तो उस समय के लिए है। और श्रद्धाना शब्द का अर्थ है कथा के महत्व को जानना, कथा का आदर करना। आदर क्या करना है? शांति से सुनना, बैठना, सेवा करना वैष्णवों की। और श्रद्धा का अर्थ है कथा को ही जीवन का परम पुरुषार्थ मानना। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म के धन, इसे श्रद्धा कहते। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि जन श्रद्धा रखते थे, यज्ञ छोड़ दिया, स्वधर्म छोड़ दिया, घर द्वार सब छोड़ करके वे भगवान की कथा का सेवन कर रहे हैं, श्रद्धा। तो ऐसा करने पर तब भक्ति बिंदन ते मई, भगवान बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, इसके द्वारा संदेश दे रहे हैं कि मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है, मेरी कथा कोई भी सुन सकता है, यह सबके लिए है। और जब भक्ति लब्धवतः साधो की मन्य दवशिष्यते, जिस व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, तो फिर की मन्य दवशिष्यते, उसके लिए और क्या बाकी रह गया। बारंबार श्रीमद् भागवतम में यह बात कही गई है कि जब भगवान में भक्ति उत्पन्न हो गई तो किम अन्यत अवशिष्यते, अब प्राप्त करने के लिए क्या बाकी रह गया, कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सौभाग्य भगवान के प्रति प्रेम करना है, अनुराग करना है। तो यह जिसके हृदय में हो गया, भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, उसके लिए कुछ भी धन बाकी नहीं रह गया। और कई स्थानों पर यह बात कही गई है कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे द्वारा दिए जाने पर भी चार पांच प्रकार की मुक्ति नहीं लेता है, वैकुंठ नहीं लेता है, मेरा सेवन करना चाहता है, मुझे सुखी करना चाहता है, यह है सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। यही तो परम फल, परम पुरुषार्थ, जार आगे तीर्ण तुल्य चारि पुरुषार्थ। भक्ति के आगे, भगवत प्रेम के आगे सारा धन तुच्छ है, मुक्ति तक तुच्छ है, फिर संसार की भुक्ति के विषय में पता नहीं क्या। भक्ति लब्धवतः साधो कि मन दवशिष्यते, मई अनंत गुणे ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि, क्योंकि मैं अनंत हूँ, मुझ में अनंत विशेषताएं हैं, सारे गुण जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते सब भगवान में पूर्ण रूप में भरे पड़े हैं। सबसे अधिक सुंदर पुरुष हैं, उनके सुंदरता का यदि वर्णन किया जाए और वर्णन करने के लिए भगवान शेषनाग बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, और दुनिया के जितने वृक्ष हैं सबको काट कर कलम बना दिया जाए लिखने के लिए, और समुद्र में ही सिलाई घोर दिया जाए और पृथ्वी को किसी नील में तैर करके कागज बना दिया जाए पूरा, और लिखने के लिए सारे विद्वान बैठे, फिर भी भगवान के गुणों का अंत नहीं हो सकता, केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे। फिर उनके ऐश्वर्य का वर्णन है, दया का वर्णन है, भक्तवत्सलता का वर्णन है, उनके सुंदर स्वभाव का वर्णन है, इसको कौन कह सकता है। परंतु जिसमें जितनी शक्ति हो उतना कहना चाहिए। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। जानते हैं कि भगवान के गुण अनंत है, फिर भी जितना कह सकते हैं उतना कहना चाहिए, जितना सुन सकते हैं उतना सुनना चाहिए, यही धर्म है। प्रहलाद महाराज ने सिंहदेव से यह बात कहे, तो भगवान अनंत गुण कह रहे थे, सदा सदा के लिए भगवान नवीन बने रहते हैं, वे अपने नित्य बंधु हैं और नित्य प्रिय, नित्य सुशील, नित्य सारे गुण में रहते हैं। ब्रह्मरी ब्रह्म है, भगवान कहते मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का अर्थ है मेरा सब कुछ चिन्मय है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है चिद्ध वस्तु। इस प्राकृत जगत में किसी व्यक्ति के विषय में हम जब सुने देखे तो देख सकते हैं कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, रोगी होता है, दांत टूट जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, पैर लंगड़ा हो जाता है, मर जाता है, कुछ दिन तक चमकता है, संसार में आकर घुस जाता है, क्योंकि ये सब माया के पुतले, माया के विकार है। पर इस जगत से भिन्न भगवान का धाम है, वहाँ के परिकर भगवान जैसे रहते, उनमें कभी बुढ़ापा नहीं आती है, कभी रोग नहीं होता है, कभी शोक नहीं, दुख नहीं, कुछ भी ग्लानि नहीं, और उन सबसे श्रेष्ठ सबके ऊपर भगवान है। तो भगवान नित्य यौवन में रहते हैं, किशोर अवस्था में, आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है। भगवान नित्य नवीन रहते हैं, प्रकृति का नियम वहां नहीं चलता, काल की दाल वहां नहीं गलती है, और सब कुछ विलक्षण है भगवान का यहाँ से। किसी मनुष्य की आप कल्पना करेंगे तो सोचेंगे कि दिन जन्म हुआ है तो मर जाएगा, आज सुंदर है कल कुरूप हो जाएगा, आज धन है कल निर्धन हो जाएगा, आज अपने किसी स्वजन के प्रति उसके मन में प्रेम है तो कल वो क्रोध में हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा, झगड़ा कर लेगा, यही सब बातें संसार में देखी जाती है। लेकिन इन समस्त प्राकृतिक विशेषताओं से भगवान मुक्त है, वे जिसके बंधु हैं तो सदा बंधु है, अगर माँ यशोदा के पुत्र हैं तो सदा पुत्र रहेंगे, न यशोदा का अवसान होने वाला है न भगवान का, इसको ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म शब्द का एक और भी दूसरा अर्थ है, किसी भी विशेषता में भगवान बृहद है, अनंत, बृहद वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। भगवान अपने मुखारविंद से अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मणि आनंदानुभवात्मनि, आनंदानुभवात्मनि, मेरा शरीर क्या है, आत्मा का अर्थ है यहाँ शरीर, मेरा शरीर विग्रह, मैं जो हूँ आनंदानुभव, आनंदमय हूँ और चिन्मय हूँ, अनुभव का अर्थ है यहाँ चित्त वस्तु, आनंदमय, सच्चिदा आनंदमय, मैं सदा रहूंगा और नित्य आनंद घन हूँ और सर्वज्ञ हूँ, चिन्मय सच्चित आनंद। इसलिए मेरे भक्त मुझमें जो भक्ति प्राप्त करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझसे बड़ा रत्न कौन है, मुझसे बड़ा आनंद कौन है, कोई नहीं, मैं ही आनंद घन हूँ, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सबसे धनवान हूँ, दिव्य पुरुष हैं, अप्राकृत हूँ। और जो व्यक्ति भक्ति पा गया मुझे पा गया, तो जब मुझे पा गया तब उसके लिए क्या बाकी रह जाता है, किमान्यद अवशिष्यते, जिसके लिए वो अस्पृहा करेगा। तो इस प्रकार देखिए, साधु संघ से भगवत कथा, भगवत कथा से भक्ति की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति भक्ति से भगवान की प्राप्ति। जथोपशयमानस्य भगवन्तं विभावसुं सीतं भयंतमोप्येति साधुं संसेवतस्तथा। भगवान एक दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि साधुं संसेवतः, जो व्यक्ति मेरे भक्तों का संग करता है, सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, उसके जीवन में भय, अज्ञान और संसार ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। अज्ञान, आगामी संसार भय और उसका कारण अज्ञान, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे परम शक्तिशाली अग्नि देव के पास आने पर अपने आप बिना प्रयास के शीत चला जाता है, यदि कोई व्यक्ति ठंडा से सिकुड़ रहा है और वह अग्नि के पास यदि आ जाए अनजान में भी, तो आते ही उसको अग्नि का ताप लगेगा और ताप के कारण शीत अपने आप चला जाएगा, उसका ठंडा का दुख बीत जाएगा और तमह अपि अप्येति और तम अंधकार चला जाएगा। यदि अग्नि प्रदीप्त है, जल रहा है, तो अंधकार दूर हो जाएगा और भयम, भय भी चला जाएगा। अंधकार के कारण भय होता है, कहीं सांप न निकल करके आ जाए, कोई भूत प्रेत न आ जाए या कोई चोर न आ जाए, इस तरह से भय होता है अंधकार में। तो अग्नि के पास आने पर अपने आप ही तीन लाभ होता है, जाड़ा का कष्ट बीत जाता है, शीत का निवारण और अंधकार का नाश और भय का नाश। इसी प्रकार से जो लोग वैष्णवों के पास आते हैं, केवल उनके संगति में आने से ही तीन काम अपने आप हो जाते हैं। पहले तो जाग्य चला जाता है, कर्म जाग्य, श्रीपा सिंह स्वामी कहते हैं जाग्य का अर्थ जड़ता, मूर्खता, और जाग्य का अर्थ जाड़ा भी होता है। जाड़ा शब्द मिलता जुलता है जाग्य, कर्म जाग्य। जो लोग ये समझते हैं कि संसारिक वस्तुओं को मैं किसी तरह से इकट्ठा करूं और भोगू और इसी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, इसी विचार में, तो इसको कर्म जड़ता कहते हैं, कर्म जड़। वो समझ ही नहीं सकते हैं कि भगवान की भक्ति से ही सारा सुख प्राप्त हो सकता है, इन कर्मों से मैं। कर्म तो करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन अंत में उसका अनुभव होता है कि अरे इससे सुख नहीं मिला, कर्म कर रहा है, कर रहा है। भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसे सुख प्राप्त होता है। तो कर्म जाग चला जाता है साधुओं के पास आने पर, जो सांसारिक वस्तुओं को भोगने की लालसा होती है वो समाप्त हो जाती है, और लालसा समाप्त होती है तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति कर्म करता था उसे दुखी होता था, वो दुख चला जाता, कर्म जाग भी चला जाता। और दूसरा लाभ होता है आगामी संसार भय चला जाता। वर्तमान में तो संसार है ही, लेकिन आगामी संसार भय का अर्थ है यह शरीर छूटेगा तो आगे दूसरा शरीर मिलेगा, अथवा इसी शरीर में आगे बुढ़ापा आएगी, अन्य प्रकार के बहुत से रोग आएंगे, और आगामी संसार भय मतलब दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर में भी शीत, उष्ण, मान अपमान, भूख प्यास आदि का कष्ट सहना होगा। तो आगामी जो संसार भय होता है वह अपने आप दूर हो जाता है वैष्णवों के पास आने से, फिर वासनाएं ही समाप्त हो जाती है, इसलिए सारा कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है, फिर शरीर नहीं लेना पड़ता और फिर संसारिक कष्ट नहीं सहना पड़ता। तो आगामी संसार भय चला जाता है, और संसार का जो मूल कारण है वो अज्ञान भी नष्ट हो जाता है, अज्ञान को तमा कहा गया। तो अग्नि देव के पास आने पर अपने आप तीन काम हो जाता है, शीत का निवारण और अंधकार का नाश और सर्प बिच्छू या चोर आदि का भय वो चला जाता है, तीनों। इसी तरह से साधुओं के पास आने पर अपने आप बिना प्रयास के ही कर्म की जड़ता समाप्त हो जाती है, आगामी संसार भय जन्म मरण समाप्त हो जाता है, तथा अज्ञान समाप्त हो जाता है। ये तीनों कार्य अपने आप हो जाते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को कह रहे हैं, जथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोपेति साधुं संसेवतस्तथा। अब भगवान साधु साधु शब्द देंगे या संत शब्द दे रहे हैं तो हमेशा ऊपर के लक्षणों को ही लेकर के चलना चाहिए। वही साधु, साधु मतलब भगवान कृष्ण का भक्त, वैष्णव और भगवान के वार्ता में रचे तचे रहने वाले लोग साधु हैं। और जो अष्टक बताया गया, मत चित अनपेक्षा, मत चित्ता, प्रशांता, समदर्शन, निर्ममा, निरहंकारा, निर्द्वंदा, निष्परिग्रह, ये अष्टक, इसको श्रीपद जीव गोस्वामी जी अष्टक कहे, श्रीधर स्वामी का आठ गुण साधुओं गिनाए गए हैं। और श्रीपद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि मत चित्ता ये विशेष्य है और सात उसके विशेषण है। असली गुण है साधु का भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला आदि में मन का आवेश अभिनविष्ट, तो इन गुणों को सर्वदा ले करके चलना चाहिए। निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्म विदः शांता नव दृढ़े वापसु मज्जताम। जैसे कोई व्यक्ति नदी में या समुद्र में डूब रहा हो, अब जल के भीतर जाने की उसकी हालत हो गई है, बहुत पानी खाया, बहुत तरंगों को झेला, लहरों को झेला, थक चुका है बिल्कुल, और अब डूबने की हालत में है, डूबने की हालत में है, लेकिन उस समय उसके पास यदि सुदृढ़ नौका आ जाए और नौका पर कर्णधार बहुत कुशल बैठा हो, और यदि वह पानी में डूबने वाला व्यक्ति नौका का आश्रय ले ले तो उस कर्णधार की सहायता से पार हो जाता है। तो जिस प्रकार से अपसु मज्जता, जल में मज्जन करने वाले डूबने वालों के लिए सुदृढ़ नौका ही आश्रय है, उसी प्रकार इस संसार सागर में जो लोग निमज्ज उन्मज्जता, जो लोग डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, दुखी हैं, उन लोगों के लिए संत ही, मेरे भक्त ही सुदृढ़ आश्रय। भगवान अपने को नहीं कह रहे हैं कि मैं आश्रय हूँ, यदि अन्यत्र इस बात को कहते हैं मैं आश्रय हूँ, यही बात सत्य है। क्योंकि जो साधु और वैष्णव है वे बताते हैं उसको कि भगवान का आश्रय लो, सर्वधर्मान परित्यज मां में कम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो। तो जो वास्तविक भक्त होगा, साधु होगा, वो कहेगा समस्त धर्मों को छोड़कर कृष्ण की शरण लो, वह यह नहीं कहेगा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो, इसका मतलब वही गीता का वक्ता हो गया। भगवान वाच, श्री भगवान वाच, भगवान गीता बोल रहे हैं, इसीलिए जहाँ मम शब्द, मत शब्द आदि प्रयोग किए हैं तो वहां पर ऐसे डायरेक्शन देना होगा, सभी धर्मों को छोड़कर कृष्ण की शरण लो, तब तो वह व्यक्ति यथार्थ गीता कह रहा है। नहीं यदि कहे कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ और सारा पाप चालू करो, वह अज्ञ व्यक्ति हो, गुमराह कर रहा है। तो धर्म क्या छोड़ेगा, पहले से ही धर्म छोड़कर अधर्म कर रहा है। तो भगवान वक्ता, यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि संसार सागर की लहरों में डूबते हुए लोगों के लिए मेरे भक्त ही आश्रय, क्योंकि आश्रय तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण, तो मेरे भक्त आश्रय है, मतलब भक्तों के द्वारा ही वो मेरी शरण में पहुंच जाता है, ये भाव। निमज्जोन्मज्जता, जो निमज्ज उन्मज्जता, जब समुद्र में या नदी में कोई व्यक्ति डूबने लगता है तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, यह निमज्ज उन्मज्ज का, तो कभी अपने को सुखी अनुभव करता है तो इसको उन्मज्जन कहे, ऊपर आना, और कभी समुद्र की लहरों में चला गया तो उसको मज्जता कहे। कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी के चुबाए, इसको उन्मज्ज निमज्ज कहे। कभी कभी व्यक्ति संसार में अपने को बहुत दुखी अनुभव करता है, बहुत दुखी, कोई स्वजन मर जाए, किसी को हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, कोई एक्सीडेंट हो जाए या धन हानि हो जाए और कोई घटना हो जाए तो लगता है कराहने दुखी हो जाता है, और वही व्यक्ति कभी कभी अपने को बहुत सुखी मानने लगता है, हंसता हुआ दिखता है, प्रसन्न, चेहरा रहता है और छोटी छोटी वस्तुओं को पा करके वास्तविक सुख नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति कभी कभी हंसने लगता है और कभी रोने लगता है, तो उसका रोना और हंसना दोनों एक चीज है। ऐसा नहीं मान लिया जाएगा कि हंसने लगा तो ठीक हो गया, नहीं, हंस रहा है वो अभी उसी तरह की चिंतनीय बात है। कोई कोई सुन करके कहते हैं बहुत हंस रहे हैं, वो बहुत हंस रहा है, तो पागलपन में हंसना भी वो दुख ही है, वो अज्ञान है, और रोना तो है ही। इस संसार में जो लोग सांसारिक समृद्धि से या सांसारिक सफलता से अपने को सुखी अनुभव करते हैं, तो वो अभी बहुत चिंतनीय बात है, कोई सुख यहाँ नहीं है। पर भगवान उसी सुख की भावना को कह रहे हैं उन्मज्जता, ऊपर आते हैं या उन्मज्जतम का अर्थ स्वर्ग में पहुंचते हैं या सत्वगुण में आते हैं, तो सोचते हैं हम सुखी हैं, हम बलवान हैं, हम सिद्ध हैं, हम सफल व्यक्ति हैं, हमारे सामने कौन है, मैं दाता हूँ, मैं दान करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बहुत सफल व्यक्ति हूँ। यह भावना भी एक ऊपर की तरंग है, लेकिन तुरंत फिर दुख में जाना होता है। तो जो लोग इस संसार सागर के थपेड़ों में, लहरों में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, उनके लिए संत परम आयनम, संत ही मेरे भक्त ही परम आयन है, परम आश्रय। भवाब्धि की विशेषता भगवान बता रहे हैं, घोर यह घोर है, बहुत भयावह संसार सागर है। कब कहां जन्म होगा, कब कहां कौन स्वजन मिलेंगे, कोई ठीक नहीं है। आज जन्म लिया है परिवार में तो सोचते हैं परिवार हमारा है, लेकिन परिवार तो छोड़िए छूट ही जाएगा, यह देह भी छूट जाएगा, देह भी लेकर नहीं जाएंगे, फिर दूसरी योनि मिलेगी, दूसरा देश मिलेगा, दूसरा काल मिलेगा, दूसरे स्वजन मिलेंगे, पता नहीं कैसा क्या होगा। ये बहुत घोर संसार, कभी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी बुखार आता है, कभी भूख लगती है, कभी मान अपमान सर्दी गर्मी आदि का बोध होता है। ये बहुत घोर भयावह, इस भयावह संसार सागर में हमारे भक्त ही आश्रय है। यह संसार जल रहा है, जल रहा है, आग लगी संसार में, और बड़ी बड़ी झरत अंगार, साधु न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संसार वास्तव में दवानल है, यह अंगार चू रहा है, दुख ही दुख है। यदि इस जगत में कृष्ण के भक्त नहीं होते, विष्णु के भक्त नहीं होते, तो संसार कब का जल गया होता। जलने का मतलब है कि पूरा दग्ध हो, दुखी हो जाते। लेकिन भगवान के भक्त हैं जो सुख का दीपक दिखाते हैं सबको, भगवान की वार्ता करके, भगवान का संदेश दे दे करके लोगों को सुखी करते हैं। तो भगवान के श्रीमुख से साधुओं की महिमा यहाँ व्यक्त हो रही है। बहु परम आयन आयन कैसे संत, ब्रह्म विदह शांता। पूर्व में दिए गए विशेषणों में से शायद भगवान की दृष्टि से एक विशेषण बाकी रह गया था, उसी को दे रहे ब्रह्म विदह, जो अप्राकृत तत्व को, मेरे अप्राकृत रूप गुण लीला आदि को जो खूब अच्छी तरह से जानते हैं, उनको ब्रह्मवेता कहते हैं। केवल संसारिक वस्तुओं का उनको ज्ञान होता ऐसी बात नहीं है। इस संसार में तो दूसरे लोगों को माया की वस्तुओं का ज्ञान है, लेकिन भगवान के भक्तों को भगवान के विषय में ज्ञान होता है। इसमें ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेता, तो ब्रह्मवेता और शांत, राग द्वेष आदि से रहित, भुक्ति मुक्ति की कामना से शून्य संत ही, मेरे भक्त ही इस संसार सागर में डूबने वालों के लिए परम आश्रय हैं, जैसे समुद्र में डूबने वालों के लिए आश्रय सुदृढ़ नौका। नौका भी चाहिए और कर्णधार भी चाहिए। जो नौका पर खेते हैं पतवार को कर्ण कहते हैं, कर्ण जैसा होता है इसलिए उसको कर्ण कहते हैं, उसको जो धारण करता है मल्ला उसको कर्णधार कहते हैं। बारंबार कहा गया है कि इस संसार में गुरु कर्णधार है और भगवान की कथा ही नौका है। बारंबार भागवत में यह बात कही गई है। नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं कि हम लोग इस दुष्कर संसार सागर को पार करने की इच्छा कर रहे थे, किए हैं, लेकिन हम लोगों के पास न नौका थी और न कर्णधार थी। भगवान कृष्ण ने आपको भेज दिया यहाँ पर। धात्रा शब्द कह रहे तम न संदर्शितो धात्रा निष्ठ दुष्करम निश्चित काम कलिम सत हरम पुंसम कर्ण धारी वाणु। आपको हमारे प्रभु कृष्ण ने भेजा है। ऐसे नौका भी थी उनके पास, श्रीमद् भागवत उनके पास था, परंतु कर्णधार नहीं था, इस नौका को खेने वाला नहीं। भगवान की कथा को भी कहने की योग्यता चाहिए, उसमें मुख्य योग्यता है भगवान के चरणों में अनुराग, और उसके बाद तो भगवान अपनी शक्ति से कथा कहने की शक्ति देते हैं। तो जैसे नौका है, लेकिन नौका पर कोई सवार हो जाए इतना ही होगा कि डूबेगा नहीं, लेकिन अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी हवा मार देगी नौका, कोई इधर से उधर चली जाएगी या बीच भंवर में पड़ जाएगी। परंतु यदि कुशल एक्सपर्ट नाविक है तो वह जानता है कि इस समुद्र में इधर ज्यादा करंट होता है, उधर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े भंवर पड़ते हैं, उधर डूब जाएगा। जो सुप्रसिद्ध जहाज डूबा था, उसका नाम टाइटैनिक, तो उसको बताते हैं जिस पर बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग मर गए थे। बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था और अपने प्रथम यात्रा में ही वो डूब गया। तो बताते हैं कि एक जगह समुद्र में बहुत भीषण तरंग बन रहा था, जैसे नदी में छोटे छोटे भंवर, आवर्त कहते हैं उसको, तो आवर्त बन रहा था। तो एक जगह पर बहुत बड़ा आवर्त बन रहा था समुद्र में, और उसी आवर्त में उसका एक अगला सिरा पड़ा और वो डूबने लगा। तो लोग हाहाकार करने लगे, रोने लगे, लेकिन वो तो बैठ गया नीचे, डूब गए। उसे कर्णधार को पता नहीं, उसमें तो कर्णधार नहीं होता है, वो तो मशीन से चलाते हैं, निपाले से पता नहीं था, नहीं तो दूसरे तरफ ले गया होता है। हजारों लोग मर गए उस पर, और संसार के बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग चढ़े थे उस पर। बहुत बड़ा टिकट लगा था चढ़ने के लिए, बहुत दाम दे दे करके चढ़े थे, और प्रथम यात्रा में ही सबकी जल समाधि हो। इस प्रकार से एक्सपर्ट वक्ता चाहिए, कुशल वक्ता, जो भगवान की कथाओं को कह सके, इस नौका को पार कर सके। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कहा है कि नाव और नदी ये सब प्रश्न है, और उत्तर क्या है, वही नाविक। जो उत्तर देने में एक्सपर्ट है वही है नाविक, इसे मानस नौका का केवनहार देने वाला। बहुत बहुत बातें हैं जानने की। एक दिन हम लोग कुंभ मेला में बात कर रहे थे, सब जगह कथाएं चलती हैं और जिसकी जैसी चेतना है वैसा बोलता है, वर्णन करता है। सब अपने अपने शिविर में चाहते हैं कि अधिक जनसंख्या आवे, अधिक लोग आवे, और सबके मन में यही विचार है कि मैं सबसे मूल्यवान वस्तु दे रहा हूँ, मेरे कैंप में आने के बाद ही मनुष्य शरीर सफल हो। जब हम घूम घूम कर देखे, एक दिन शाम को बैठे तो हमारे मन में आया, यदि सुंदर राजा होता परीक्षित महाराज की तरह, तो कुछ विद्वान मिल करके वैष्णव और एक डिग्री रखते, एक उपाधि देते और कथा कहने का अधिकार उसको दिया जाए, उन लोगों को दिया जाए। नहीं, रामायणी जी से बात कर रहा था, तो रामायणी जी ने कहा कि इस समय अगर ऐसा संगठन बने तो जो लोग योग्य नहीं है उनको ही होते थे बोल देते। लेकिन वास्तव में इस बात की आवश्यकता, जैसे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए होते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनको डिग्री दी जाती है, या कौन पढ़ाएगा उसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षकों को पहले पढ़ाया जाता है कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, और जब तक वो पढ़े नहीं है उनको नौकरी नहीं दी जाती। लेकिन भागवत कहने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, बस कुछ भी जानता हो या नहीं जानता हो, भागवत छोड़िए, भागवत तो फिर भी कहने वाले कुछ न कुछ तो भगवान की बात कहेंगे। जिसको भागवत का कोई ज्ञान नहीं है वही वक्ता बना हुआ है संसार। मनकम वचन लबार वक्ता कलिकाल मई, वक्ता कलिकाल कलयुग में कौन वक्ता होगा जो मन से, कर्म से और वचन से लबार होगा, वही वक्ता माना जाए। क्या किया जाए, इसी से भगवान यहाँ पर संतों के गुण बोलते जा रहे हैं। ब्रह्म विदह शांता और ऊपर के गुण दिए, और सब मिला करके मेरा भक्त, असली लक्षण साधुओं का ये। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम त्वहम धर्मो वित्तम नृणाम प्रत्य संतोर वाग विद्यतो रणम। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, भगवान और भी साधुओं की महिमा बता रहे हैं। जिस प्रकार से के लिए भोजन जरूरी नहीं, रामायण जी से बात कर रहा था तो रामायण जी ने कहा कि इस समय अगर ऐसा संगठन बने तो जो लोग योग्य नहीं है उनको ही वो देते बोल देते लेकिन वास्तव में इस बात की आवश्यकता, जैसे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए होते हैं तो यूनिवर्सिटी में उनको डिग्री दी जाती है, या कौन पढ़ाएगा उसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षकों को पहले पढ़ाया जाता है कि ऐसे पढ़ाना चाहिए, और जब तक वो पढ़े नहीं है उनको नौकरी नहीं दी जाती। लेकिन भागवत कहने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, बस कुछ भी जानता हो या नहीं जानता हो, भागवत छोड़िए, भागवत तो फिर भी कहने वाले कुछ न कुछ तो भगवान की बात कहेंगे। जिसको भागवत का कोई ज्ञान नहीं है वही वक्ता बना हुआ है संसार। मनकम वचन लबार तेई वक्ता कलिकाल मह, सोई वक्ता कलिकाल कलयुग में कौन वक्ता होगा जो मन से, कर्म से और वचन से लबार होगा, वही वक्ता माना जाए। क्या किया जाए, इसी से भगवान यहाँ पर संतों के गुण बोलते जा रहे हैं। ब्रह्म विदह शांता और ऊपर के गुण दिए, और सब मिला करके मेरा भक्त, असली लक्षण साधुओं का ये। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण आर्तानाम शरणम त्वहम धर्मो वित्तम नृणाम प्रत्य संतोर वाग विद्यतो रणम। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, भगवान और भी साधुओं की महिमा बता रहे हैं। जिस प्रकार से शरीरधारी के लिए भोजन जरूरी है, आवश्यक है, प्राणिनाम प्राण, वास्तव में कोई प्राणी यहाँ संसार में जी रहा है तो सांस लेने से ही नहीं जी रहा है, अन्न से जी रहा है, अन्न का अर्थ भोजन, भोजन से जी रहा है। यदि भोजन कुछ दिन न मिले तो हवा में सांस लेता हुआ बंद हो जाएगा, जब भोजन मिलता है तब सांस चलती रहती है, सांस चलने से ही जी जाएगा यह बात नहीं है। जब इसमें ईंधन डाला जाता है, भोजन डाला जाता है, तब सांस चलती रहती है। तो वास्तव में प्राणियों के लिए अन्न ही प्राण है। और आर्तानाम शरणम तो हम, और जो लोग दुखी हैं संसार में उनके लिए मैं ही शरण, उनका दुख मैं दूर कर सकता हूं। भूखे प्राणियों का प्राण है अन्न, उनको जीवित रखता है, और दुखियों के लिए मैं ही शरण हूँ। धर्म वित्तम निर्णय प्रत्य, और शरीर छोड़ करके जाने वाले, परलोक में जाने वाले अर्थात मरने वालों के लिए धर्म ही असली धन है। इस संसार में तो हम लोग देखते हैं कि यदि किसी के पास रुपया पैसा है तो कहीं जाता है, खाता है, पीता है, किसी होटल में रुकता है, और कार भी भाड़ा पर ले लेता है। धन है तो सब कुछ मिल जाता है, मालिश करने वाले सेवक भी मिल जाते हैं, जहाँ तहाँ वो तेल लेकर के घूमते रहते हैं और क्या क्या है, फेरोपी कहते हैं इंग्लिश में, घूमते रहते हैं। तो पैसा है तो सेवक मिल जाते हैं, कार मिल जाती है, बागवान मिल जाता है और सारा सामान मिल जाता है, गद्दे मिल जाते हैं, तकिए मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है। परंतु जिस दिन शरीर छूटेगा और महाधनी व्यक्ति भी शरीर छोड़ करके जाएगा तो ऊपर लोक में क्या धन होगा। ये धन तो सारा बैंक में इधर उधर अपने पुत्रों के पास इधर उधर रह जाए, तो परलोक में दूसरे शरीर में क्या धन रहेगा। धर्म, भगवान कहते हैं जो धर्म किया है, पूर्ण किया है या मेरी भक्ति किया है, वही परलोक में धन बनकर काम देगा। यहीं पर परलोक के लिए यहीं पर कमाना है, जाएगा न एक पैसा जाएगा और न तो एक मिनट के लिए यहाँ की कार जाएगी, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। यहाँ का कुछ भी नहीं जाएगा। मरने के बाद तो छोड़ दीजिए, यदि आदमी वृद्ध हो जाता है, अति वृद्ध, तो उस समय भी सारे छूट जाते हैं। कार घर में पड़ी रहती है लेकिन कार पर जाकर चढ़ने की शक्ति नहीं रह जाती, बाथरूम में जाने की शक्ति नहीं रहती। छूटने के लिए तो यही सब छूट जाता है, तो मरने के बाद क्या काम आएगा। तो मरने के बाद काम आएगा, भगवान कहते हैं धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, मर कर जाने वालों के लिए असली धन है धर्म। यदि भगवान की भक्ति किया है, दान पुण्य किया है, प्राणियों का उपकार किया है, तो वहां पर उसे बहुत सुंदर भवन मिलता है, विमान मिलते हैं, अप्सराएं मिलती हैं और भी नाना प्रकार के सुख, स्वागत की सामग्रियां मिलती हैं। और ऐसा वर्णन है कि देवता स्वर्ग के द्वार पर उसकी अगवानी करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। तो मर करके जो चला गया उसके लिए धर्म ही धन है। तो संतो अर्वाक विद्यतो रणम, और भगवान कह रहे हैं, तीन उदाहरण देकर कह रहे हैं कि प्राणियों के लिए अन्न ही प्राण है, भोजन ही प्राण है, दुखियों के लिए मैं शरण हूँ, और मरे हुए के लिए, मर करके परलोक में गए हुए के लिए धर्म ही धन है, और जो सब प्रकार से भयभीत है, दुखी है, सब प्कार से कांप रहा है, भयभीत है, मतलब दुख में है, उसके लिए संत ही अरणम शरण है। सब प्रकार से मेरे भक्त ही अरण, दिव्यतो अरणम, अर्वाग दिव्यतो, अर्वाग का अर्थ सर्वतः, जो सब प्रकार से खिन्न है, सब प्रकार से दुखी है, भय में है, संसार बंधन में है, उसको मुक्त करने वाले मेरे भक्त हैं। इसलिए मेरे भक्तों का ही संग करना चाहिए। तीन तीन दृष्टांत देकर भगवान इस बात को समझा रहे हैं। जितना हम खाते हैं, भोजन से जितना प्रेम है, उतना प्रेम भगवान के भक्तों से होना चाहिए। कितना अन्न प्रिय है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, नहीं प्रेम करेंगे तो मर जाएंगे, मतलब संसार बंधन में ही रह जाएंगे। तो जितना अन्न आवश्यक है प्राणी के लिए, और जितना मैं आवश्यक हूँ, शरण हूँ, और जैसे धन धर्म करने की आवश्यकता है, यदि सब चाहिए, सारा सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, तो मेरे भक्त ही आश्रय। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः, देवता बांधवा संत संत आत्मा हमेव च। संतो दिशन्ति चक्षुंसि, संत चक्षुंसि आंखें देते हैं, ऐसी आंखें देते हैं कि व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरर्कः समुत्थितः, सूर्य भगवान आंख नहीं देते हैं, सूर्य तो बहिरर्कः, वो तो केवल वो भी समुदित होते हैं, जब पूरा पूरा उगते हैं तब बाहर देखने की शक्ति देते हैं, बाहर देखने की शक्ति देते हैं। लेकिन संत तो ऐसी दृष्टि देते हैं कि व्यक्ति भगवान को देखने लगता है, वैकुंठ बिहारी को देखने लगता है, और भीतर में भगवान अवस्थित है, इसको भी देखने लगता है, अपने को भी देखने लगता है। यह दृष्टि सूर्य नहीं दे सकते। देखिए भगवान किस तरह तुलना कर रहे हैं। सूर्य भगवान उगते हैं, तो सारे जगत के प्राणी देखना प्रारंभ करते हैं। सूर्य के अभाव में हम लोग देख नहीं पाते। देखने की शक्ति आंखों में तब होती है जब सूर्य उगते। एक व्यक्ति के प्रकाश से सारा जगत देखने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी सूर्य भगवान है, अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। दिन में भी लोग अज्ञानी ही बने रहते हैं। जितना रात में अज्ञान रहता है उतना दिन में भी अज्ञान रहता है, बल्कि दिन में और बढ़ जाता है। रात में तो सोते हैं वो तो ठीक स्थिति है, कुंभकर्ण सम सोवत नीचे, अगर सोए रहे तब तो ठीक है, लेकिन दिन में जगेंगे तो और कुरफात शराब पीना जुआ खेलना इन सब कार्य में लग जाते हैं। तो भीतर ज्ञान नहीं हो पाता। सूर्य बाहर प्रकाश देते हैं, वही अर्क समुदित सूर्य बाहर प्रकाश देते हैं, लेकिन संत ऐसी दृष्टि देते हैं कि सर्वत्र दिखाई पड़ने लगता है। और सूर्य के साथ यह निरुपम उपमा दे रहे हैं, उपमा नहीं है वास्तव में, सूर्य से बहुत अधिक संतों को भगवान बता रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि देते हैं कि व्यक्ति सब कुछ देखता है, कि सूर्य एक वचन में, संत बहुवचन में, लेकिन एक एक संत एक एक सूर्य से भी अधिक तेजस्वी होता है भीतर आंख देने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी संसार में कोने कोने में अज्ञानियों के हृदय में कोटि वर्षों से आए हुए अज्ञान अंधकार का विनाश करते। जो सूर्य भगवान तो रोज उगते रहते थे करोड़ों वर्ष से, लेकिन एक आदमी दिघोटी नहीं बना। इनके प्रकाश देते थे, लेकिन इनके प्रकाश में लोग पाप ही करते आए। और काम की शक्ति देते हैं, क्रिया करने की शक्ति देते हैं, लेकिन भीतर हृदय में ज्ञान नहीं देता है। पर संत तो दिव्य दृष्टि देते हैं कि मैं दिखाई पड़ने लगता हूँ, मेरा धाम दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए हमारे भक्त सूर्य से भी अधिक दानी है। देवता बांधवा संत वास्तविक पूज्य हमारे भक्त है, वास्तविक बंधु भाई मित्र या पति हमारे भक्त है। देवता बांधवा संत, संत आत्मा हमें। और उद्धव जी, यदि सच पूछो तो अंतिम बात कहता हूँ कि मैं ही संत के रूप में हूँ। भगवान इतना तक बोल रहे, उनकी उपयोगिता और भगवान में सुदृढ़ प्रेम को दृष्टि में रखकर के भगवान बोल रहे हैं कि मैं जितना उपकार करता हूँ जीव का, उतना उपकार वे कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं मैं ही संत के रूप में हूँ, अब अधिक तुमसे मैं क्या करूँ। भगवान इस तरह खोलकर बोल रहे हैं, देवता बांधवा संत। देवता का अर्थ आराध्य। यदि सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो भक्तों की करनी चाहिए। भक्तों को खिलाना पिलाना देना लेना, उनकी आराधना करना, देवता का अर्थ यह। संसार में लोग लगे हुए हैं कि यह देवता हम पर रिस जाए, यह ठीक हो जाए, यह देवता ठीक हो जाए। और एक जगह एक भक्त ने कहा है कि आज के युग में पुरुषों के लिए तो और पति के लिए पत्नी ही देवता बन गई, उसी को प्रसन्न रखने में अपने जीवन की सफलता समझते। तो किसी का देवता लीडर हो गया, नेता है, नेताजी खुश रहेंगे तो बस हमारा सब ठीक। किसी का मिनिस्टर देवता हो गया है, उसी की पूजा में लगा रहा। कोई किसी की चमचागिरी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, लेकिन वास्तविक देवता जिसकी जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसको प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, वो है साधु वैष्णव। वो वैष्णव ही असली देवता है और असली बंधु है, अपने परिवार के वास्तविक सदस्य वही है। व्यक्ति बंधु किसको मानता है, जिसके साथ देह का संबंध होता है, ये जो हमारा उपकार करता है, जैसे माता पिता पुत्र भाई मामा चाचा, ये सब बंधु हैं। एक जीव का हित करते हैं, अपना समझकर पालते हैं, पोषते हैं, शिक्षा देते हैं, विपत्ति से बचाते हैं, इनको बंधु कहता है। लेकिन वास्तविक हित करने वाले, वास्तविक आत्मीय आत्मा का हित करने वाले हमारे भक्त हैं, वही असली बंधु है। वैष्णव बंधु सत्कृत्य, उनको ही अपना भाई अपना पिता अपना पुत्र अपना बंधु मानना चाहिए। संत आत्मा हमें होता, संत ही आत्मा है। आत्मा का अर्थ परम प्रिय, संत से ही प्रेम करना चाहिए, मेरे भक्तों से प्रेम करना चाहिए। अहम एव च, मैं ही संत हूँ। इसका अर्थ है कि मेरे भक्तों का यदि आदर होता है तो मेरा आदर हुआ, मुझमें और उनमें भेद नहीं है पूजा की दृष्टि से, मैं पूज्य हूँ। इस प्रकार वैष्णव गुरु का सत्कार करना चाहिए, वैष्णव का आदर करना चाहिए। यह बात कहकर भगवान अब कथा का उपसंहार करते हुए कहते हैं, वैत सेनास्तपोत्येवम् उर्वश्य लोक निष्प्रिय मुक्त संगो महीने ताम आत्मा रामश्च चारः। महाराज पुरुर्वा उर्वशी से इस प्रकार निष्प्रिय हो गए और उसके लोक को छोड़ करके आ गए इस पृथ्वी पर, और आत्मा राम हो गए, मुक्त संग। अब किसी भी व्यक्ति में उनकी आसक्ति नहीं थी, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं थी, और एता महीन इस पृथ्वी पर, भगवान द्वारका में बोल रहे हैं, कहते हैं इस पृथ्वी पर वे आ गए और यहीं पर वे कभी वृंदावन, कभी द्वारका, कभी जगन्नाथपुरी, कभी हरिद्वार, अयोध्या घूमने। बहुत धन्य भूतल है, वास्तव में हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग यहाँ जन्म लिए इस भूमि पर। उर्वशी लोग छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर महाराज पुरुर्वा फिर यहाँ आकर के भगवान की भक्ति करते हुए घूमने लगे और मुक्त संग हो गए, किसी परिवार में आसक्ति नहीं, किसी में आसक्ति नहीं। इस श्लोक में इनको वैत सेन कहा गया है। वैत सेन का अर्थ पुरुर्वा, ये वीत सेन के पुत्र थे। वीत सेन वो जब सुदुम ने गए थे इलावृत वर्ष में, तो उनके जितने भी सैनिक थे, सेना, वे सब स्त्री हो गए, नारी हो गए थे, तो उनको वीत सेन कहा जाने लगा, जिसकी सेना वीत गई मतलब। और जब सारे सैनिक स्त्री रूप में बदल गए, अब तो महिला पुलिस हो गए, महिला पुलिस नहीं, महिला मिलिट्री कही, अभी मिलिट्री में स्त्रियां नहीं ली जा रहे हैं ना, अभी नहीं ली जा रहे हैं, पुलिस में तो बड़े जोर से हो रहे हैं। तो सुदुम्न की सेना बीत गई थी, मतलब स्त्री भाव को प्राप्त हो गए, इसीलिए उनका नाम पड़ा वीत सेन, और वीत सेन के पुत्र हुए पुरुर्वा, नहीं हाँ पुरुर्वा बुद्ध के संसर्ग, तो इसीलिए इनको वैत सेन कहा। वैत सेन महाराज अर्थात महाराज पुरुर्वा आत्मा राम हो गए, अब उनका चित पूर्ण रूप से मुझ में लग गया, अपने आप में संतुष्ट रहे, मेरी भक्ति में लगे रहते थे, मैंने मेरे रूप गुण लीला आदि के गायन में, श्रवण में, और पृथ्वी पर निर्द्वंद निसंग घूमने लगे। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।